मेरे आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे शेयर मार्केट के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं और शेयर मार्केट के इस पहलू के बारे में कि शेयर मार्केट में तेजी क्यों है, अभी तेजी क्यों है और खासकर जब कोरोना का पीरियड रहा था उस समय तेजी क्यों थी, और इसके बाद फिर हम लोग कुछ दूसरी घटनाओं पर बात करेंगे। शेयर मार्केट के बारे में मुझे लगता है कि इनिशियल जानकारी आपको होगी ही, और मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको बेसिक जानकारी देने नहीं जा रहा हूँ, और यदि आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो शायद मेरी बातों को समझने में आपको बहुत कठिनाई होगी। खैर, देखिए, शेयर मार्केट का बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं या किसी कंपनी में भागीदार हो जाते हैं, जैसे आपने रिलायंस के शेयर खरीदे, मैंने वर्ड यूज़ किया खरीदे, तो खरीद फरोख्त कहाँ होती है? आप सब्जी खरीदने जाते हैं, किराना का सामान खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो उसके लिए आप बाजार में जाते हैं। यानी कि शेयर मार्केट का मतलब हुआ एक ऐसा बाजार जहाँ खरीद फरोख्त होती है, जहाँ खरीदे जाते हैं शेयर और बेचे जाते हैं, तो ये हो गया शेयर मार्केट, है ना। बड़े बड़े शहरों में इस तरह की बिल्कुल व्यवस्था है, और आजकल तो ऑनलाइन के जरिए जैसे आप दूसरा सामान कहीं से भी खरीद सकते हैं, उसी तरह से शेयर भी आप खरीद सकते हैं। इसके खरीदने का अपना एक पूरा का पूरा सिस्टम है, ऐसा नहीं है सब्जी भाजी की तरह कि पैसा दिया और आप खरीद करके थैले में भर करके सब्जी ले आए, ऐसा नहीं है, एक सिस्टम है, लेकिन वो बहुत ही सरल और सहज सिस्टम है। तो अगर आपके पास रिलायंस के शेयर हैं तो इसका मतलब है कि आप रिलायंस कंपनी के भागीदार हैं। ये है सीधा सीधा शेयर और शेयर मार्केट का मतलब। अब आप देखिए कि जैसे हम रिलायंस के उदाहरण को लें, तो अगर रिलायंस का शेयर, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, आपने 500 रुपए का खरीदा, एक शेयर उसका 500 रुपए का है, ठीक है। बहुत ही सामान्य तौर पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि रिलायंस के शेयर की कीमत 500 रुपए से घटकर 475 रुपए हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? आप बताइए, उस शेयर की कीमत गिर गई। या एक मकान है, इस मकान की कीमत गिर गई, उसका मतलब क्या हुआ? मकान की कीमत गिर गई का मतलब है कि अब यह मकान थोड़ा सा पुराना पड़ गया है, उसकी वैल्यूएशन कम हो गई है। तो अगर रिलायंस के शेयर की कीमत घटकर 475 रुपए रह गई, इसका मतलब है कि रिलायंस की वैल्यू गिर गई है, रिलायंस को नुकसान हो रहा है। अब यह बात अलग है कि यह नुकसान कितना है, क्योंकि नुकसान को अब आप 500 रुपए से 475 के अनुपात में नापेंगे, यानी कि अब रिलायंस कंपनी बंद होने जा रही है, नहीं, पहले उसका प्रॉफिट जितना था उससे प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक इसी तरीके से यदि रिलायंस के शेयर की कीमत 500 से बढ़कर 525 रुपए हो गई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो रिलायंस की जो प्रॉफिट है वो बढ़ गए हैं या बढ़ने की संभावना है। याद रखिए कि जो शेयर मार्केट है वो आशंका और संभावनाओं पर काम करती है। आशंका मतलब यह है कि उसके प्रॉफिट कम हो सकते हैं, संभावना यानी कि उसके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। अब किसी भी कंपनी के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट क्यों बढ़ेंगे और क्यों घटेंगे, इसके बारे में आप जानते ही हैं, है ना। बहुत सी है, सरकार की पॉलिसीज हैं, उस वस्तु की डिमांड कितनी है, उसका कंपटीशन कितना है ना, सरकार की नीतियां कैसी हैं, बहुत सी बातों पर वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट इनके आधार पर घटता है और बढ़ता है। अब एक बहुत सिंपल सा प्रश्न यहाँ है कि पूरे के पूरे कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में, फैक्ट्रियां बंद हैं, बाजार बंद हैं, वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है, वस्तुओं का विक्रय भी नहीं हो रहा है, जरूरत की वस्तुएं ही खरीदी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर बिल्कुल बंद हैं तो चाहे वो रिलायंस कंपनी हो, टाटा की कंपनी हो, या बजाज की कंपनी हो, या अदाणी जी की कोई भी कंपनी हो, किसी भी क्षेत्र की कंपनी हो, सीधी सी बात है कि अब उसकी एक्टिविटीज अगर बंद हो गई है तो उसके प्रॉफिट गिरेंगे। इसमें आप सारी कंपनियों को शामिल कर लीजिए, छोटे छोटे दुकानों को भी शामिल कर लीजिए, उन सब के प्रॉफिट गिरेंगे। अब सीधी सी बात है कि अगर इनके प्रॉफिट गिरेंगे तो शेयर मार्केट में गिरावट होनी चाहिए, यानी कि इन कंपनियों के शेयर सस्ते हो जाने चाहिए, और अगर इन कंपनियों के शेयर सस्ते हो जाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि शेयर मार्केट गिरेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। चलिए, दुनिया के शेयर मार्केट से तो आप परिचित नहीं होंगे, लेकिन भारतीय शेयर मार्केट पर तो आपकी शायद नजर होगी ही। दोनों स्थितियों में अगर आप शेयर में थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं तो या फिर अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगातार ये पढ़ने को मिल रहा होगा कि शेयर मार्केट में तेजी आ रही है, कभी वो स्थिर रह जाती है, कभी थोड़ा बहुत गिरती है, लेकिन इन टोटल इस पीरियड में शेयर मार्केट में बढ़ोतरी हुई है। और केवल भारत के शेयर मार्केट में बढ़ोतरी नहीं हुई है बल्कि अमेरिकी शेयर मार्केट में भी बढ़ोतरी हुई है। और इसको लेकर के दैनिक भास्कर में एक बहुत अच्छा लेख छपा है रुचिर शर्मा जी का, जो दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, और मेरा सौभाग्य था कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मैंने इन्हें रूबरू सुना भी है। मैं वार्ड के लिए आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग उसे जरूर पढ़िएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सच पूछे तो उल्टे बांस बरेली जैसी बात है। या यूं कह लीजिए कि जो गंगा है वो हिमालय से तो नीचे उतरती है, लेकिन पता लग रहा है कि गंगा हिमालय पर चढ़ रही है। ऐसा कैसे हो गया, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसका बहुत ही एक सिंपल सा कारण है। देखिए सिंपल सा कारण क्या है, क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन प्री में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए। दोस्तों देखिए होता क्या है कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में जो वस्तुओं के मूल्यों का जो निर्धारण होता है उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वह है मांग और पूर्ति, कि वस्तु की मांग कितनी है और वस्तु की पूर्ति कितनी, डिमांड एंड सप्लाई का जो नियम है वो काम आता है। ठीक है, जब हम डिमांड करेंगे किसी भी चीज की तो डिमांड करने के लिए हमारे पास साधन होने चाहिए, और जब आपूर्ति वो कंपनी करेगा तो सीधी सी बात है कि उसके पास वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधन होने चाहिए, ये होने चाहिए। अब ये सारी चीजें लगभग कोरोना काल में बंद हैं, लेकिन अब आप देखिए कि फिर ये डिमांड कहां से आ रही है, क्योंकि अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है यानी कि शेयर्स की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो सीधी सी बात है कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये डिमांड बढ़ कहां से रही है, बस ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल सा सवाल है, सरल सा इसका उत्तर भी है। उत्तर यह है कि आपको मालूम है कि कोरोना के पीरियड में दुनिया के सभी देश की सरकारों ने पैकेजेज अनाउंस किए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये पैकेज दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी या उसके एक दो देश और भी होंगे जिन्होंने पैकेजेस देने शुरू किए। इतना पैसा हम मार्केट में देंगे, अलग अलग तरीके से देंगे, बैंकों को कहा कि तुम लोन बांटो, इस तरीके से हम किसानों को, जैसे भारत में देखिए किस तरह से हम किसानों को देंगे, इस तरह से हम दूसरे वर्ग को देंगे, बैंकों को देंगे, कंपनियों को देंगे, फलाने फलाने तरीके से हम पैसा देंगे। तो लोगों के पास पैसा पहुंच गया, मतलब आपको आश्चर्य होगा, रुचिर शर्मा जी ने लिखा है, बल्कि उसे आप नोट भी कर लीजिए कि अमेरिका में 20% जो डॉलर थे वो 2020 में छपे। कल्पना करके देखिए, डॉलर छपे, फेडरल बैंक ने छापे, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा आ गया, अब जब लोगों के पास पैसा आ गया तो खर्च करने के लिए तो उनकी कोई गुंजाइश है ही नहीं, मार्केट बंद है तो क्या करें, अब उस पैसे का रख करके क्या करें। तो लोगों को लगा कि भैया इससे बेहतर है कि इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाए, और सिंपल सी बात है कि उन्होंने शेयर खरीदने शुरू कर दिए, और जब शेयर खरीदने शुरू कर दिए तो शेयर की डिमांड बढ़ने लगी, और जब डिमांड बढ़ने लगी तो शेयर की कीमतें बढ़ने लगी। बहुत ही सरल सा नुस्खा है, भारत में भी यही हुआ, अमेरिका में यह हुआ ही हुआ है, और दुनिया के दूसरे और भी देशों में यह हुआ है। दोस्तों बस बहुत ही सरल सा उत्तर, तो मुझे लगा कि कहीं आप उलझ न जाएं तो मैं सरल तरीके से इस बात को आप तक पहुंचा दूं, और इस तरीके से कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यदि इससे संबंधित कभी कुछ भी पूछ लिया जाता है प्री या मेंस में तो आप उसका उत्तर आसानी के साथ दे सके। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, अब दूसरी खबरों को देख लेते हैं। रेडियो न्यूज में आपने बात सुनी होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब हमारे देश को खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत है, फूड प्रोसेसिंग रिवोल्यूशन की जरूरत है। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए जब भी हम कृषि व्यवस्था की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो उपाय सुझाया जाता है वह है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग जब अगर उस तरह के हमारे उद्योग विकसित होने लगेंगे तो होगा क्या कि जो किसानों के जो उत्पाद हैं, जो अभी आप यूं कह लीजिए कि मिट्टी के मोल बिकते हैं जब उनका उत्पादन सीजन होता है, आप सुनेंगे कि टमाटर जो है ना लोग किसान फेंक फेंक करके जा रहे हैं, आलू की कोई कीमत ही नहीं है, प्याज की कोई कीमत ही नहीं है, और दुर्भाग्य की बात देखिए कि कुछ महीनों के बाद यही आलू और प्याज क्या बन जाते हैं, तो वो किसानों को फेंकने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए गोडाउन नहीं, और अगर चलिए गोडाउन बनवा भी लें तो उनका उपयोग क्या करेंगे, कितना आलू और प्याज देश खा लेगा। लेकिन अगर इनको प्रोसेस कर दिया जाता है, आलू से दुनिया भर की चीज़ें बनाई जाने लगी, जैसे चिप्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और दुनिया भर की चीज़ों में उनका उपयोग किया जाने लगा, तो इन चीज़ों की कीमतें बेहतर हो जाएंगी और तो हमारे किसानों को अपने उत्पाद के की अच्छी कीमतें मिलने लगेंगी। तो और भारत में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी लगभग मोर देन 55% पॉपुलेशन गाँव में रह रही है और वो कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो अगर फूड प्रोसेसिंग में की फील्ड में रिवोल्यूशन हो जाता है तो डेफिनेटली ये किसानों के लिए वरदान जैसा होगा। और उसी के तहत बकायदे प्राइम मिनिस्टर ने ये कुछ बातें बताई हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस टॉपिक का एक्सपर्ट नहीं होना है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें जाननी है। जैसे उन्होंने कहा कि आज हमारे पास है कि इस क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और कोऑपरेटिव सेक्टर भी है। जैसे आप देखिए कि अमूल कोऑपरेटिव सेक्टर में है, रूरल इकोनॉमी को फंड देने के लिए, धन देने के लिए बकायदे हमारे पास एजेंसीज हैं। तो इन सब का इस्तेमाल करके अब बेहतर होगा कि हम गांव के पास जो एग्रो इंडस्ट्री है उसके क्लस्टर बनाएं, गांव के आसपास के एक एरिया को चुन लें और देखें कि उन गांव में क्या किन किन वस्तुओं का उत्पाद हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और उन वस्तुओं से संबंधित इंडस्ट्री लगा दें, बहुत बड़े बड़े नहीं तो छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा दें। तो इस तरह से एग्रो इंडस्ट्री का बकायदे क्लस्टर बन जाएगा। इसी तरह से ऑर्गेनिक के क्लस्टर बनाए जा सकते हैं, एक्सपोर्ट के क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। और आपको मालूम है कि सरकार ने अब किसान रेल की शुरुआत की है, जिस पर वस्तुओं के परिवहन में 50% की सब्सिडी दी जा रही है और उसमें बकायदे फ्रिज वगैरह लगे रहते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह लगे रहते हैं ताकि वो वस्तु ताजी रहे जहां तक उसे पहुंचाया जा रहा है वहां तक। तो लगातार इधर कोशिश चल रही है। लेकिन जो फूड प्रोसेसिंग का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, स्पेशली मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूज में आपने एक शब्द सुना होगा, शैडो पेड। शैडो पेड प्री में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे आप केवल एक बात से समझ लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि यह मेलवेयर है। मेलवेयर वायरस है आप कह लीजिए, जिसे कि कंप्यूटर वम्प्यूटर की हैकिंग हो जाती है, बेकार हो जाती है चीजें, तो ये मेलवेयर है ना, शैडो पेड। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो न्यूज से हम लोगों को मिलती हैं। हमारे ऑनलाइन की क्लासेस जो हैं उसको 3 स्टूडेंट ने कल ज्वाइन किया है। इन दोस्तों के नाम हैं धर्मेंद्र कुमार, मृत्युंजय कुमार और नीतीश श्रीवास्तव। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं सौरभ प्रताप, सुभाष कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर बिहार से, प्रकाश नारायण, शुभम पांडे, ज्ञानेंद्र मिश्र कानपुर से, साहिल भाटिया, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से और नितिन कुमार पटियाला से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।